دو تا فانوس پا به پای نور و سایه، دو تا همسایه یه تنها، دو تا دیوار، دو تا آواز رها تو گوش دنیا، دو تا ابر خسته از بارون بسیار. با تو باشم یا نباشم آرزو می، مثل آینه هر جا هستم روبرو می، چاره غیر تو ندارم از زمونه، تو نباشی کی قدرم و
سلام، کیسی ہو؟
سو رہی تھی.
نہیں بھائی، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟
سعید گھر میں نہیں ہے، اگر چاہو تو اوپر آ جاؤ، چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں.
کچھ مسئلہ ہو گیا ہے؟ سعید تو ٹھیک ہے نا؟
نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے.
ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں.
وہ امریکی زبردست نشانے باز تھا سعید میاں، اگر اس کے سامنے سوئی بھی ہوتی تو گولی اس کے نکوے سے پار کر دیا کرتا تھا، اتنا ماہر تھا. تو جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے بھی اس وجہ سے کہ فرنگیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، کیونکہ بے عزتی کی بات تھی، فوراً دوربین اٹھائی اور چاروں طرف کا اچھی طرح جائزہ لیا. پہاڑی کے دامن سے بالکل ہمارے سامنے ایک 9 سالہ بچھارا رہا تھا، اسے پکڑو، اتنی موٹی گردن، ادھر دیکھو، ہاں اتنی موٹی. سعید میاں تمہاری قسم نہیں کھاؤں گا، اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سینگ تھے اتنے بڑے، اس سے بھی بڑے، وہ اس سے 5 گنا، بالکل اس طرح. اتنی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھی.
خوش آمدید.
شکریہ. آؤ بیٹھو، تکلف نہیں کرو،
ڈائٹ والا ہے. بہت خوشی ہوئی.
شکریہ. سعید کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا؟
جب تمہیں فون کیا کیا کر رہی تھی؟
تھوڑا اچار اور سرکہ کھانے کی میز پر رکھ رہی تھی علی رضا کے لیے. کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو نا؟
تم مزے میں ہو نازنین.
اتنی مشکل حالات میں گھر چلاتی ہو، پھر بھی
تمہارا دل اتنا خوش ہے کہ کوئی نہ کوئی کام نکال لیتی ہو، اچار بنا لیتی ہو، بچوں کے ساتھ گھومنے ٹلنے جاتی ہو.
جہاں تک ہوتا ہے اپنی سی کوشش کرتی ہوں. اتوسا جان، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو. نا شکری نہیں کرو، بہتوں کے دل میں تمہاری طرح زندگی گزارنے کی حسرت ہے. سعید کی مالی حالت بھی اچھی ہے اور ایک اچھا شوہر بھی ہے. مجھے نہیں معلوم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو.
تمہیں کیا پتا، شادی کے بعد میں یہ سمجھی کہ سعید کو بہت کام رہتا ہے. اس کے کام کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ میرے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا. ہم دونوں کے شادی کے کچھ ہی مہینے بعد پہلے والا عاشقانہ رابطہ ختم ہو چکا تھا.
تمہیں یقین ہے؟
جب سعید سے کہتی ہوں کہ ذرا میرے لیے بھی کچھ وقت نکال لیا کرو، پہلے تو میرا منہ بند رکھنے کے لیے تحفے لاتا تھا. پہلے تو مجھے اچھا لگتا تھا اور انجوائے کرتی، لیکن بعد میں تحفہ جتنا مہنگا ہوتا گیا اتنا ہی برا لگنے لگا. اصل میں جانتی ہو کیا ہے، سعید مجھ سے تھک چکا ہے، خود کو دوسرے کام میں مصروف رکھتا ہے.
تم تو جتنی بھی باتیں بتا رہی ہو وہ میری نظر میں، مجھے یقین ہے کہ سعید اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا. آخر ایسا کیا ہو گیا جو اس طرح سے سوچ رہی ہو؟ نہیں معلوم، برا نہ ماننا، تم نے اس میں کچھ دیکھا ہے؟
سعید کو بچہ چاہیے.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے.
اچھا بتاؤ، جب تم ماں بنی تو تمہیں کیسا لگا؟
جب بچہ پیدا ہوا؟
نہیں،
ہم تو خود ہی بچے تھے، کوئی عمر ہی نہیں تھی ہماری، کوئی پروگرام بھی نہیں تھا ہمارا، خود بخود سب کچھ ہو گیا. اچانک دیکھا کہ علی رضا پیدا ہو گیا، ایک سال کا ہوا، دو سال کا ہوا، اسکول جانے لگا اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہو گئے.
میں نے فوراً ہوا کے رخ کا اندازہ لگایا. یوں میں نے اپنی بندوق اٹھائی اور اچھی طرح نشانہ سادھا. میں نے جب نشانہ سادھا تو دیکھا آہستہ آہستہ سائیڈ میں آ رہا ہے. جیسے ہی مڑا فوراً ایک کے بعد ایک کئی گولیاں میں نے اس کے اوپر چلا دی، ٹھیک اس کے پہلو میں. گولی کی آواز سننے کے بعد امریکی کی سمجھ میں آیا کہ معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے. میری طرف یوں دیکھا اور کہنے لگا، مرحبا مسٹر.
تمہارا اتنا بدن گرم کیوں ہے بیٹا؟
بیٹا
معاف کرنا، میری عادت پڑ گئی ہے. آؤ بیٹھو یہاں، تمہیں بخار ہے؟
نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا. ہائے میرا سر.
کچھ کھایا پیا ہے؟
نہیں، جب سے سعید باہر گیا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگی.
سعید گیا کہاں ہے؟
اوپر شیرزاد کے پاس.
لیکن کیا فائدہ، دو تین دن بعد ہم نے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد कभी शिकार नहीं किया, नहीं किया। इसका किस्सा भी बहुत लंबा है, अगर तुम्हें बताना शुरू करूंगा तो काफी वक्त लगेगा।
वाकई? अच्छा, ये तौबा करने का क्या किस्सा है?
लगता है हाथूसा साहिबा हैं। खामोश बैठे रहो, कुछ भी ना बोलना, मैं कह दूंगा कि नहीं है।
शिरजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कहिए। मैं इसे साफ कर रहा था।
जी हाँ, एक मिनट, सैयद साहब से कहिए कि जरा इधर आए।
सईद यहां नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन साहब।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कि आतुसा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, बुखार से जल रही है।
शाबाश सईद मियां, शाबाश, जिंदाबाद। इसी को तो कहते हैं जबरदस्त चाल। शाबाश। कहां चल दिए? अरे कहां जा रहे हो?
आतुसा को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं।
यहीं बैठो, भले आदमी डॉक्टर कैसा, तुम्हारे कान ये सब सुनते सुनते भर जाएंगे। ये सब फजूल की बातें, तुम्हें बुलाना चाहती हैं। बैठो। सईद मियां, मुझे नहीं मालूम कि अपनी बीवी से इतना क्यों अदबते हो, क्यों हमेशा उसी की बात चलती है। तुम कब तक उससे दबते रहोगे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मियां, तुमने उसके लिए सारे असबाब जिंदगी फराहम कर दिए हैं, गाड़ी, पैसा, घर, और क्या चाहिए? हाँ, उसे क्या हक पहुंचता है कि वो तुम्हें बाप बनने से महरूम करे? कभी भी तुमने ये सोचा, कभी भी तुमने इस पर गौर किया?
हाँ पूछा। शादी के पहले साल जब आतुसा से उसके माजी के बारे में पूछता था तो हर बार बात बदल देती थी, इसीलिए मेरा शक बढ़ गया। काम धंधा छोड़ के अपनी बीवी की जासूसी में लग गया। जानते हैं क्या समझा? पता चला कि आतुसा का मासी बहुत तलख था, उसका बाप कभी घर पे नहीं रहता था। मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहता, मैं तो उसे आराम पहुंचाना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि माजी अपना भूल जाए। सिर्फ एक बात नहीं समझा कि वो क्यों बच्चा नहीं चाहती। बस यही शिरजाद साहब, बस।
Thank you.
नादिर का एक फोटो तुम्हारे दोस्त को देना चाहती हूँ।
फोटो किस लिए?
मुतमईन होना चाहती हूँ कि वो अब वहां नहीं जाता।
क्या तुमने फिर कुछ देखा है?
नहीं, सिर्फ मुतमईन होना चाहती हूँ बस।
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ज्यादा सख्ती कर रही हैं।
प्यारी नाजनीन, सख्ती की कोई बात ही नहीं है। मैं पूरी तरह मुतमईन होना चाहती हूँ। मैं अपना टेंशन दूर करना चाहती हूँ और यही बेहतर है।
नहीं अफसाना बहन, हमेशा वही बेहतर नहीं होता जो तुम कहती हो। वालेकुम अस्सलाम।
क्या अच्छे वक्त पे फोन किया। मैं आपको फोन करके दो पैकेट जाफरान मंगाना चाहता था।
इत्तेफाक से मैंने भी इसीलिए फोन किया कि आपसे कह दूं कि इसके बाद किसी और से खरीदा करें।
क्यों, क्या कोई बात हो गई है?
नहीं, अब मैंने ये काम करना छोड़ दिया है।
कब से? हमारी तो अभी जल्दी जान पहचान हुई है।
आज ही से। आप भी मुझे इसके बाद फोन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम खुसरो।
अरे वालेकुम अस्सलाम नाज़िर साहिबा, वहाँ भीग जाएंगे, इधर आइए, मुझे आपसे काम भी है।
आप क्यों सहमत कर रहे हैं, थक गए होंगे?
लेबर सब छुट्टी पर चले गए हैं, महबूबा ने यहाँ का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है। अच्छा, अगर सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल ना किया होता तो हम दोनों की हालत ही कुछ और होती। अगर तैयार हो तो इस हफ्ते में प्रोग्राम बनाऊँ।
क्या बताऊँ, मेरा भाई तो अभी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। एक माली प्रॉब्लम थी लेकिन फिलहाल हल हो गई है।
अच्छा, 200 मिलियन से ज्यादा मिल गए हैं। कहीं खजाना तो नहीं मिल गया?
नहीं, बस इतना इंतजाम हो गया है कि तुम्हारी बहन का एहसान ना लेना पड़े और अंगूठी भी वापस ले लूं। खुसरो साहब, मुझसे नहीं होगा, किसी और को देखो ताकि ये काम तुम्हारे हाथ से ना निकले। मदद की कोशिश करने का शुक्रिया।
तमरकुज बहुत अहम है, लटकी हुई हालत में होना चाहिए हाथ। बहुत खूब, इंसान पूरे दिन होशियार रहता है।
बहुत अच्छा निशाना लगाती हो।
प्रैक्टिस चाहिए, जरा वो कासनी निकालो पिए। अपने लिए भी निकालो, तुम्हारी किडनी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी।
माल भी चाहिए और अंगूठी भी।
कितना है?
8,200। 12,00,000 पहले के बाकी हैं, 100 ग्राम मुझे चाहिए। 2-3 दिन से कस्टमर्स को दौड़ा रही हूँ, 2-1 हाथ से भी निकल गए।
तुम्हारे पास अब पैसे नहीं थे? किसी को लूट तो नहीं लिया? खुसरो, खुसरो, सौ ग्राम वाला पैकेट दे दो इन मोहतरमा को। अगर ये सोच रही हो कि आइंदा भी कोई चीज गिरवी रखकर तुम्हें जींस दूंगी तो भूल जाओ।
खुदा हाफिज।
नहीं मालूम कहां से पैसे इकट्ठा किए। फिलहाल तो कह रही है कि इंतजाम हो गया है और काम नहीं करूंगी।
फिक्र ना करो, उसका छोटा भाई सब कुछ खराब कर देगा। ये अपने मरहूम शौहर से ज्यादा सख्त तो नहीं है।
सलाम अलैकुम आती, कैसी हो? खाना तो नहीं बनाया?
अलैकुम सलाम। अभी नहीं, कुछ तबीयत सुस्त है, अभी उठी हूँ।
तो फिर जल्दी करो कि भूख से दम निकला जा रहा है।
तुम मेज पर खाना लगाओ, मैं पहुंच रही हूँ।
खुदा की कसम मजबूरन कर्ज लेना पड़ा, उसके बदले देख रहे हो इसे वापस ले लिया है। सिर्फ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नादिर ने इस डर से पैसे दिए कि कहीं अफसाना के सामने उसका रास्ता खोल दूं। यकीन करो मैं उससे गुंडा टैक्स नहीं लेना चाहती थी, सच तुम्हारी कसम वापस दे दूंगी, तुम्हारी कसम। अहमद तुम इस वक्त कहां हो? तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। जल्दी वापस कर दूंगी, ठीक है?
ये लीजिए। कल तक सोच भी नहीं सकता था मेरे लिए तुम्हें बुखार आ जाएगा।
खुशफहमी में ना रहो, सुबह से कुछ नहीं खाया था और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया था, इसी वजह से मुझे बुखार आ गया। क्या है?
तुम मुझसे क्यों हकीकत को नहीं बताती हो?
खुदा के लिए फिर शुरू ना करो, तुम जानते हो कि फिर झगड़ा हो जाएगा।
अरे आखिर झगड़ा कैसा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा क्यों नहीं चाहती, बस।
क्या फिर बच्चों की तरह नाराज होकर छोड़ कर जाना चाहते हो?
तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे बताओ, मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। इस बार तो दवा डॉक्टर से भी काम नहीं चलेगा तुम्हारा।
जानते हो मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मुझे अपने पड़ोसियों से अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। एक अफसाना है जिसका घर में आधा हिस्सा है, और एक नाजनीन है
जिसको शोहर के मरने के बाद पता चला 200 मिलियन उसके अकाउंट में है,
और एक मैं हूँ जिसका शोहर सबसे ज्यादा मालदार है
और मेरे पास एक झोपड़ी भी नहीं है।
अरे इसका बच्चे से क्या ताल्लुक है?
क्यों नहीं ताल्लुक है? मेरा मेहर इतना कम है कि किसी को बताने में भी शर्म आती है, और 14 के आगे 2 जीरो लगाना पड़ता है ताकि 1400 हो जाए। मैं क्यों जनाब अली के माँ पर ये साबित करूं मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी नहीं की है? मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी माँ हमारी जिंदगी में इतना क्यों दखल देती है।
आतूसा साहिबा, तुम्हें हुआ क्या है?
इसकी क्या गारंटी है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ हमारे हाथ पर 14 सिक्के रख कर ये ना कहे कि अब तुम मेरे एक लौते बेटे की जिंदगी से निकल जाओ? हाँ
तुसा साहिबा, मेरी माँ हमारी जिंदगी में कहाँ दखल देती?
हाँ दखल देती है, वरना 40 लाख के लिए इतना हंगामा ना खड़ा करती और इतनी तफ्तीश ना करती। इसकी क्या क्या गारंटी है कि अगर बच्चा हो जाएगा तो इस जिंदगी और घर में मेरा भी कोई हिस्सा होगा? हाँ, क्या गारंटी है?
अम्मी, इसका आपस में क्या ताल्लुक है?
मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ कि वो एक्टर है।
अतुसा को 40 डिग्री का बुखार था, खतरनाक है। यूं ही तो बुखार का बहाना नहीं कर सकती।
जैसे तुमसे घुटने टिकवा लिए और वापस घर बुलवा लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम नहीं जानते कि औरतों का मकर और चाले कितनी गहरी होती है।
माफ कीजिएगा, आप भी औरत है ना?
इसलिए तो कह रही हूँ कि नहीं पहचानते क्योंकि मर्द हो। मैं रोजाना 100 बार शुक्र करती हूँ कि मैं मर्द नहीं हूँ। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं इन औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती।
मैंने ऐसी चीज सोच रखी है कि कल तक आतुसा साहिबा हाँ कह देंगी।
एक साल से तुम मुझसे यही कह रहे हो। अगर 2 दिन तक कुछ नहीं कर सके तो टिकट लेकर ईरान आ जाऊंगी।
नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही सब ठीक कर लूंगा। आपसे वादा करता हूँ कि कल तक ये अच्छी खबर आपको दूंगा। हेलो अम्मी, अम्मी
जाऊं तुम्हारे बच्चे का मुंह देखे बगैर।
अरे खुदा के लिए ऐसा न कहें, एक छोटे से मसले को इतना बड़ा न करें।
मैं मज़ीद बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज़।
खुदा
वालेकुम अस्सलाम।
मुझे और ज़ाफ़रान चाहिए, पहले वाले सब खत्म हो गए।
जिस तरह से तुम काम कर रहे हो इसमें तो सिर्फ नुकसान है। तुम्हारा भी नुकसान है और मेरा भी। मेरी सारी पूंजी डूब जाएगी।
आप मुतमईन रहे परवाने साहिबा, अब मैंने सीख लिया है कि कैसे काम करना है।
ठीक है, ये भी देखती हूँ।
इस बार पलक झपकते ही सब बेच दूंगा ताकि ना आपको नुकसान हो ना मुझे।
अच्छा ठीक है, अब इतनी भी डींगे ना मारो, कल तुम्हें फोन करूंगी।
जैसे आपकी मर्जी परवाना साहिबा। और कोई हो?
क्यों नहीं
जी, फरमाए।
जो पहले बेचा उसके पैसे चाहिए, लाना ना भूलना।
जी जो हो।
शायद उसकी क्लास देर में खत्म हुई और जब खत्म हुई तो मोबाइल ऑन करना भूल गया। परेशान मत हो।
क्या कहूँ
भांजे, तुम्हें जिंदगी का सबक सिखाना चाहता हूँ। खाना पकाने में तेजी, दिलचस्पी और लगाव बहुत जरूरी है।
वो किस लिए मामू?
हाँ, इसलिए कि मेरा चीनी दोस्त कहता है कि अगर दिलचस्पी और लगाव से खाना नहीं पकाओगे तो खाना अच्छा नहीं होगा और फिर तुम्हारे वजूद में सफर की शुरुआत अच्छी नहीं होगी और यहीं से अलमिया शुरू होता है।
मामू।
हाँ?
आपका चीनी दोस्त बावर्ची है?
हाँ, मेरा चीनी दोस्त बावर्ची है, लेकिन उसका असल काम जूडो कराटे सिखाना था। वो भी तुम्हारे मामू की तरह हर फन मौला है। कहाँ?
मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं कुछ हो ना गया।
रुको रुको, जरा रुको, एक मिनट रुको। यहाँ तुम आओ, खाने पर नजर रखो लेकिन उसे हाथ मत लगाना। एक मिनट रुको। अली रजा 18 साल का है, बच्चा नहीं है।
क्या सिर्फ बच्चों को ही कुछ होता है?
नहीं, उसकी क्लास लंबी चल गई होगी, ये भी तो हो सकता है बिला वजह परेशान हो।
मैंने स्कूल फोन किया तो कहा गया कि 7 बजे वाली क्लास में तो गया ही नहीं, और फिर तुम कह रहे हो कि परेशान क्यों हूँ।
एक मिनट इधर आओ।
अब क्या है?
तुमने परवरिश के अपने तरीके से बच्चे को भागने पर मजबूर कर दिया।
बकवास क्यों कर रहे हो? तुम भी इसी तरह से अम्मी को परेशान किए रहते थे।
मैं अम्मी को परेशान करता था? अफसाना का हिस्सा मुझसे ज्यादा क्यों होता था और मेरा क्यों कम होता था? अच्छा ये बताओ, चैटिंग का क्या मामला है?
तुम्हें कहां से पता चला?
बेवकूफ तो नहीं हूं कि कुछ ना समझूं, लेकिन झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा।
मैं उससे झगड़ना नहीं चाहती। अरे मैं भला अली रजा से झगड़ा करूंगी? वो बड़ा हो गया अब तो, पर ये इंटरेस्ट टेस्ट में पास नहीं होगा। मैं डरती हूँ, वो अपना निकल जाती, कुछ भी नहीं हो सकेगा।
आप वही डांट डपट करें, खून ना बहाएं। पता चल रहा है कि गुस्से में है। हर चीज की एक वजह होती है जिसका पता लगाना चाहिए। वो एक मर्द है, उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसे संभाल लूंगा, उससे बात करूंगा।
लगता है सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द करना पड़ेगा। अगर बात करने से ठीक हो जाता तो अब तक ठीक हो चुका होता।
अदम एतमाद।
मामू वो क्या हूँ, खेलना चाहता हूँ।
आओ बंजी साहब आओ। देखो अली रजा अम्मी की बातें नहीं सुनता, वो मार खाना चाहता है। लगता है तुम्हें मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो। जाओ। तुम मुझ पर छोड़ दो, हम मर्द हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। एक बार मुझे भी आजमाने दो, देखें क्या होता है। ये लो।
सलाम अलैकुम।
अलैक।
मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था।
चिंगम ठीक से खाओ।
लो देख लो, तुम दोनों तो मर्द हो ना, अब अपनी जबान इस्तेमाल करो, देखती हूँ मेरे सर पर कौन सा ताज रखते हो।
तुम्हें हैरान कर दूंगा।
अय अहमद।
अम्मी ने जरूर आप लोगों से कहा है कि अली रजा हमें परेशान किए हुए हैं।
ठीक है, अब खुद को इतना अहम ना समझो।
आप जरूर मुझे नसीहत करने हैं और ये कहने कि मुस्तकबिल की फिक्रों और जिंदगी में आपके तजुर्बों से फायदा उठाऊं, ऐसा ही है ना? देखें, जब तक आप और अम्मी मुझे बच्चा समझती रहेंगी, उस वक्त तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे। अरे भाई, 2 बार चैटिंग करते हुए देख लिया, तब से कहानी गढ़ ली।
मैं तुमसे मर्दों की तरह 2 बात करना चाहता हूँ, सुनोगे?
कहिए।
तो पहले इसे खाते हैं, फिर बात करते हैं।
یه دل درمونده دارم، یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه، مهمونه نخونده دارم، دلی که بین این همه بازم تنها و بی کسه، مسافری که تا ابد به مقصدش نمیرسه.
Coming.